प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
आज के हमारे श्रोता साथी हैं सिरवा बांधा बेमित्रा के योगेश जांगड़े, जिनसे बातचीत कर रही हैं मीनू सिंह।
सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार करें मीनू सिंह का नमस्कार। आज के हमारे इस कार्यक्रम में श्रोता हैं योगेश जांगड़े। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
जी दीदी नमस्ते, और तमाम श्रोता मित्रों को भी नमस्कार, और अर्पा रेडियो से जुड़े हुए सभी साथियों को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
बिल्कुल, हमारे सभी साथियों ने, सभी सुनने वालों ने, सभी चाहने वालों ने आपका नमस्कार स्वीकार किया है। और योगेश जी, सबसे पहले हम सबको बताएं कि आप क्या करते हैं, अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं, कौन कौन है।
अभी तो पढ़ाई मेरा पूर्ण हो चुका है, जिसमें मेरा MA भूगोल से है, और इसके अलावा DEd कर लिया हूँ और PGDCA इस सत्र में कर।
अच्छा, तो योगेश जी क्या करना चाहते हैं आगे जाके, इतनी सारी पढ़ाई आप कर रहे हैं?
वैसे तो बचपन से ही शिक्षा के क्षेत्र में जाने में रुचि रही है
जी।
और उसके लिए लगातार प्रयासरत भी है, और देखते हैं, मेहनत तो किए हैं, उम्मीद है सफलता भी मिलेगी।
बिल्कुल, जो मेहनत करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी योगेश जी। और एक बात और बताइए कि आपने बताया कि आपने भूगोल में मास्टर डिग्री ली है ना
जी,
तो ये जो भूगोल है का अपने समाज में, अपने जीवन में जब आप मास्टर डिग्री लेते हैं और उसका क्या प्रभाव देखते हैं, आपका देखने का नजरिया कैसे बदलता है? क्योंकि मास्टर डिग्री जो होती है उसमें आप एक आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं हर समस्या का, उसकी समस्याएं भी देखते हैं, समाधान भी देखते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप कौन कौन सी समस्याएं देखते हैं और उनका समाधान अपने रूप में किस तरह से पाते हैं, अपनी पढ़ाई और शिक्षा का उपयोग करते हुए कैसे पाते हैं?
सबसे बड़ी चीजें तो जैसे भूगोल की बात है तो उसमें तो यही होती है कि हमारा जो आसपास का वातावरण है
जी,
जिसको हम पर्यावरण कह सकते हैं, तो उसमें निवास करने वाले सभी जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो या स्वयं मानव समुदाय हो, तो इनके क्रियाकलापों का विशेष अध्ययन किया जाता है
जी।
और इसके अलावा बाकी पर्वत, पठार, पहाड़, जंगल, ये सारी चीजें भूगोल में समाहित होती है
जी।
और इसके अलावा इसमें जैसे हम किसी भी चीजों को परखते हैं, जांचते हैं, समझते हैं, फिर अपना उसमें अपना नजरिया बनाते
जी। तो अपने आसपास कौन कौन सी समस्या में आपको इस शिक्षा से एक विशेष नजरिया बनाने में आपको सहायता मिली?
सबसे बड़ी सहायता या सफलता तो यही कह सकते हैं कि आस पड़ोस में जैसे हमारा पर्यावरण है, जो हम जिस आवरण से घिरे हुए, तो उसमें प्रदूषण की समस्याएं होती है, तो उसको रोकने का पूरा प्रयास करते हैं, और चाहे पेड़ लगाकर प्रकृति को शुद्ध करने के रूप में हो या अन्य किसी भी काम के रूप में
जी। जी, और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और उसका कितना उपयोग हो सकता है, कितना जो बर्बाद हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, ये आगे जाके आबादी के रूप में, ये भी भूगोल का एक हिस्सा होता है कि आबादी को कितना संसाधन आगे जाके मिल सकता, वो भी हम देख पाते हैं आपकी इस पढ़ाई के जरिए, ये आप कहना चाहते हैं?
जी जी, क्योंकि संसाधन होते हैं वो, कुछ संसाधन तो सीमित मात्रा में होते हैं और कुछ असीमित होते हैं। तो जैसे हम लोग, जैसे जल ही हमारा बहुत बड़ा, हमारा जीवन दायिनी संसाधन, तो हम उसका उतना ही उपयोग करें जितना हमारे लिए जरूरी है, और आने वाली भावी पीढ़ी को देखते हुए जल का समुचित उपयोग करें। जल ही नहीं, जल के अलावा जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, तो ये सब चीजें भी ऐसी है जिनको हमें बचा कर रखना है आने वाली पीढ़ी के।
जी, बहुत बड़ी बात की है आपने कि सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, प्राकृतिक संसाधन भी हमारे सीमित हैं, तो उन्हें बचा कर रखना है, और ये हमें एक, जब हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो योगेश जी, और हमने आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपका गाँव कहाँ है, किस जगह पर है और क्या क्या विशेषता है उसकी, तो पहले परिवार के बारे में बताएं, कौन कौन है आपके परिवार में?
जी, मैं जिस परिवार में निवास करता हूँ असल में वो संयुक्त परिवार है अभी की स्थिति में। तो मेरे यहाँ मेरी दादियाँ हैं और मेरे पिताजी, माताजी, चाचा परिवार है, तो ऐसे कुल मिला 24 लोगों का परिवार है।
अरे वाह।
और श्रीमती जी है और छोटे छोटे दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी।
आपका विवाह हो चुका है और बच्चे हैं, बेटा और बेटी है, नाम बताएंगे? नहीं
जी, जो मेरा बेटा है वो अभी 6 साल का है और अभी क्लास 1 में पढ़ाई करने जाता है, रौनक है उसका नाम।
वाह
जी। और बेटियां हैं अभी 2-2.5 साल की है, यशिका है।
यशिका, बहुत ही अच्छे नाम है, बहुत प्यारे नाम है, लेकिन अपनी श्रीमती जी का नाम आपने नहीं बताया हमको।
हाँ, वो उनका नाम तो लेना जरूरी है क्योंकि वो गांव की सरपंच भी है और पूरे गांव का देख रेख करती है।
चलिए, बधाई, बहुत बहुत बधाई। और एक घर में पत्नी अगर सरपंच है तो पति की कितनी सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है।
जी जी, रंजीत संग्रह है मेरे भोजपुरी में
जी,
जो की आप के प्रोग्राम नियमित सुनती है और आकाशवाणी से भी काफी हद तक जुड़ी हुई है।
बहुत अच्छी बात है। हम ये जानना चाहते हैं कि पत्नी जब सरपंच हो जाती है और पूरे गांव की जिम्मेदारी उनके पास आ जाती है, ऐसी स्थिति में परिवार में पति की जिम्मेदारी किस तरह से बढ़ जाती है, इस बारे में थोड़ा बताएं।
अब जिम्मेदारी तो बढ़ती ही है क्योंकि पूरे गांव को संभालना पड़ता है। आप उस गांव के मुखिया हैं और मुखिया होने के नाते छोटी छोटी समस्याएं हो या लोगों को ऐसी कोई भी चीजें जिनसे जन समुदाय का जुड़ाव हो, तो उन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे किसी को किसी योजना के बारे में नहीं पता तो उस चीज में उनकी मदद करना, किसी के आस पड़ोस में गली मोहल्ले में कोई साफ सफाई संबंधी समस्या है तो उनको समय समय पर जानकारी लेते रहना।
जी जी, आप कितना सहयोग करते हैं अपनी पत्नी का?
सहयोग करते हैं, बाकी ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि वो पढ़ी लिखी है तो पंचायत के ज्यादातर काम वो स्वयं ही करती है।
चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने बताई।
क्योंकि हम हमेशा महिलाओं के जागरूक बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो ये व्यवहारिक रूप में भी लागू होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि अगर वो सरपंच है तो पंचायत की सारी समस्याएं जानना, समझना, उनको सॉल्व करना और लोगों को जोड़े रखना, ये सब उनका काम है और वो बखूबी इस काम को कर रहे हैं।
बिल्कुल योगेश जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि महिला सशक्तिकरण तभी संभव होगा कि महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां बिना किसी सहयोग के खुद निर्वहन करें। और हम इस बात के लिए आपको बहुत साधुवाद देते हैं कि आप इतनी सुंदर सोच रखते हैं, और आपकी पत्नी को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपना कार्यकाल बहुत सफलता से पूरा करें। योगेश जी
जी, रुचि और बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले मैं रेडियो से ही शुरुआत करना चाहूंगा। जब मैं 10 वर्ष की उम्र का था तो रेडियो सुनने की जो प्रेरणा मुझे है वो मेरे चाचा श्री भुवनदास जांगरे जी से मिली है
जी।
क्योंकि पहले मैं उनको देखता था तो वो दूर दराज में जाकर STD PCO में जाकर रेडियो कार्यक्रमों में फोन करते थे, भाग लेते थे और कई कार्यक्रमों में उनकी रिकॉर्डिंग बजती थी रेडियो पर, तो उनका एक अलग ही प्रभाव पड़ा मुझ पर और मुझे भी मतलब जुड़ने में काफी वो मदद किया
जी। रेडियो के अलावा और कौन कौन से शौक हैं आपके?
वैसे तो घूमने फिरने का बड़ा शौक है और फोटोग्राफी का शौक काफी ज्यादा है, मतलब ऐसा प्रोफेशनली टाइप का शौक है।
अच्छा, उसके लिए कहीं से प्रशिक्षण लिया है आपने?
प्रशिक्षण तो नहीं लिया हूँ, बाकी जैसे शादी विवाह में मित्रों के साथ उसमें कुछ समय बिताया हूँ, तो जो फोटोग्राफी की बारीकियाँ होती है उनको प्रायोगिक तौर पे सीखा।
चलिए, ये बहुत अच्छी बात है।
और जब मैं बीएड कर रहा था तो राज्य स्तरीय में मुझे फोटोग्राफी में 2रा स्थान मिला था।
वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हम जानना चाहेंगे किस तरह के फोटोग्राफ जो है वो आपके आए हैं, उसमें प्रतियोगिता में जीते हैं?
उसमें प्राकृतिक जो दृश्य था
जी।
तो उनको सबसे बेहतर मतलब लेना था, तो उसी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
चलिए, प्रकृति के बीच रहते हुए आपने उसको फोटोग्राफ के रूप में कैद किया और पूरी दुनिया ने उसे सराहा, बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई। कि और आगे हम जानना चाहते हैं कि आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं, व्यवसाय आपका क्या है?
मूलतः हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और हमारा पूरा परिवार खेती बाड़ी से ही जुड़ा हुआ है।
अच्छा, क्या क्या उपज लेते हैं आप लोग?
अभी रवि फसल का समय है, तो अभी इस समय चना गेहूं सरसों की फसलें लगा चुके हैं।
और धान बिक चुका है या बिकने वाला?
धान मतलब एक दो बार तो चले गए हैं और अभी और बचे हुए हैं, तो मतलब जारी है लगातार, क्योंकि खेती बाड़ी का काम ऐसा रहता है कि लोगों को फुर्सत ही नहीं रहता है।
बिल्कुल सही बात आपने बताई। तो इसमें खेतीबाड़ी में पशुपालन भी आप करते हैं कि पशुपालन नहीं करते हैं?
नहीं, केवल खेतीबाड़ी करते
हैं। तो लोग कहते हैं कि पशुपालन से कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है।
वो बात सही है, बाकी हम लोग नहीं करते हैं। अब देखिए, अब समय की बात है, अगर भविष्य में ऐसी कोई योजना बनी तो भी कर लेंगे।
जी जी, हमारी शुभकामनाएं और आप और अधिक सफल हो। योगेश जी, खेती की बात हो गई, आपके व्यवसाय की बात हो गई, घर परिवार की बात हो गई, और अब हम जानना चाहते हैं कि अर्पा रेडियो से आप कब से जुड़े हैं?
अर्पा रेडियो से जुड़े हुए मुझे लगभग 8 महीना हो गया।
और बहुत सारे कार्यक्रमों में आपके नाम आते हैं, पसंदीदा जो श्रोताओं के कार्यक्रम है उनमें। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि एक रेडियो श्रोता और एक रेडियो नहीं सुनने वाले में आप क्या फर्क पाते हैं?
मुख्य तो अंतर जो होता है, रेडियो सुनने वाले जो साथी होते हैं वो किसी भी विषय को काफी बारीकी से सीखते हैं, समझते हैं, मतलब जो भी जानकारी है उनको रेडियो के माध्यम से मिलती है उनको वो पूरी तरह अपने जीवन में लागू करते हैं
जी।
और जो साथी रेडियो नहीं सुनते तो वो थोड़ा जो एक अपन कहते हैं ना, आसपास की जो घटनाएं होती है या जो चीजें होती है उनसे उतना उनका जुड़ाव नहीं होता
जी।
मतलब कहने का मतलब है, रेडियो सुनने वाले साथी जो होते हैं तो उनकी जो भाषा शैली भी, जितना मैं अनुभव किया हूँ, 15-20 साल हो गया रेडियो से जुड़े हुए, तो उनके बात करने का अंदाज भी काफी अलग होता है, बेहतर होता है।
हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि आप अच्छी चीजें सुनते हैं तो अच्छा बोलते हैं, सही चीजें सुनते हैं तो सच्चाई पता चलती है और आप अपने जीवन में सुधार लाते हैं। तो रेडियो किस्सा आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
हाँ जी, बिल्कुल। रेडियो से काफी किस्सा जुड़ा हुआ है जिसमें मैं कुछ कुछ चीजों को श्रोता मित्रों को बताना चाहूंगा। बचपन से ही जब रेडियो सुनना शुरू किया तो हर श्रोता की एक अपनी अलग पसंद होता है, तो किसी को पत्र लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को फोन इन कार्यक्रमों में बात करना ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को SMS या ईमेल करना अच्छा लगता है। तो बचपन में ही जब मैं फोन इन कार्यक्रम सुनता था तो एक अलग ही सुखद अनुभव होता था, क्योंकि दूर बैठा श्रोता, चाहे वो अंबिकापुर हो या जगदलपुर हो, जब वो अपने आस पड़ोस की बातें हमें सुनाते थे, हमारी कानों तक गूंजती थी, तो वो बड़ा ही मतलब एक रोचक और मनोरंजक लगता था। तो हमारा भी काफी ज्यादा दिलचस्पी उसमें बढ़ा और रेडियो के प्रति हमारा जो रुझान है, लगाव है, वो लगातार बढ़ते गया और इस तरह बढ़ा कि हम लगभग देश भर के 120 रेडियो स्टेशन से जुड़ गए।
क्या बात है, मतलब एक देश के अंदर एक रेडियो श्रोताओं का एक अलग पूरा देश है जिसमें सारे वर्ग, धर्म, जाति के लोग हैं जो मिलकर आपस में प्यार से अपनी बातें करते हैं और अपने अच्छाई का प्रचार प्रसार करते हैं
जी। और जब भी हम लोगों का एक श्रोता सम्मेलन होता है तो वो पल तो ऐसा होता है कि कभी भूलने ही नहीं देता, क्योंकि जिस श्रोता को हम केवल नाम से जानते रहते हैं, आवाज से जानते रहते हैं, और उस श्रोता से जब भेंट होती है तो ऐसा सुखद अनुभव होता है कि उसको हमेशा के लिए समेट लिया गया है।
जी जी, ये अनुभव हम लोग भी कभी कभी करते हैं जब हम श्रोता सम्मेलनों में जाते हैं, उनकी आत्मीयता, उनका प्यार हमेशा के लिए हमारे अंदर भी बस जाता है और वही हमको प्रेरणा देता है।
और आकाशवाणी पर दूरदर्शन जो है हमारा, तो उसमें कई कार्यक्रमों में तो हमारी रिकॉर्डिंग भी हुई है, जैसे छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम आता था आज मोर पारी, तो इसमें भी हमारी वार्ताएं शामिल हुई है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों में लगातार स्वास्थ्य संबंधी, जागरूकता संबंधी चीजों से जुड़े रहे हैं, तो उसमें भी परिचर्चा में शामिल हुए हैं और टेलीविजन में भी वो प्रसारण हुआ था। तो ये सब चीजें ऐसी है कि रेडियो से हमें मतलब इतनी जानकारी या लाभ हुआ है कि हम उनको शब्दों में एक एक करके बताने लगे तो बहुत समय निकल जाएगा।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक, जैसे कि आपने बताया कि आपका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है ना?
जी।
तो अपने गांव के आसपास आप लोगों ने कौन कौन सी समस्याएं देखी और उनका निवारण करने के लिए आप लोगों ने किस तरह से प्रयास किए, ये हम जानना चाहते हैं।
प्रमुख तो समस्याएं होती हैं कि जो हमारे गांव मोहल्ले होते हैं मुख्य रूप से गांव में
जी।
तो जो रोड होते हैं सड़क
जी।
तो वो मेरे यहाँ कुछ जर्जर स्थिति में, तो उसको एक रोड तो पूरा पूर्ण हो चुका है काम और अभी 3-4 रोड अगले 1-2 महीने में बन जाए। और इसके अलावा प्रमुख जो समस्याएं होती हैं वो पेयजल और साफ सफाई की होती है। तो पेयजल के लिए हमारे यहाँ 3 जगह बोर की सुविधा है जिसमें पानी टंकी लगा हुआ है और जरूरत के हिसाब से उसमें लोग उसका उपयोग करते हैं। और जहाँ तक बात साफ सफाई की होती है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा कह सकते हैं काम होता है, क्योंकि इस आस पड़ोस को साफ रखना मतलब बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को, अपने आस पड़ोस के लोगों को बीमारियों से दूर रखना, तो वो काम मैं सबसे ज्यादा तरजीह देता हूँ।
बिल्कुल, इसीलिए छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे स्वच्छ राज्य का इनाम पाने वाला प्रदेश है। तो
बिल्कुल, और हमें गर्व है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य पूरे भारत में लगातार पिछले 3-4 वर्षों से प्रथम स्थान आ रहा है। तो ये हम जन सामान्य के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इसमें हम भी लगातार प्रयास करते रहें।
बिल्कुल, सबके सहयोग से ऐसा संभव होता है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपसे हुई।
और लास्ट में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा दीदी।
जी जी,
मैं शिक्षा से भी काफी लगाव रखता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया है कि शिक्षक बनने का बचपन से ही ख्वाब रहा है, तो मैं शिक्षा से भी जुड़ा हुआ हूँ। गाँव में जब भी ऐसा समय मिलता है तो बच्चों के बीच में जाता हूँ, उनकी कुछ समस्याएं होती हैं तो उनको पूछता हूँ, पता करता हूँ और फिर उन समस्याओं को, उनके आगे के भविष्य के लिए उनको जो सही गाइडलाइंस होती है
जी,
तो उन सबको बच्चों को बताता हूँ, ताकि बच्चे आने वाले भविष्य के निर्माता होते हैं। तो बच्चे जितना बेहतर पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेल कूद करेंगे, तो वो हमारे गाँव के, हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए, निर्माण के लिए बहुत फायदेमंद होगी।
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा जो है वो बांटने के लिए ही होती है और आप वही कर रहे हैं और अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। और यहाँ पर योगेश जी, आपसे बहुत सारी बातें की हमने, आपने अपने बारे में बताया, अपने ग्राम के बारे में बताया, अपनी शिक्षा के बारे में बताया और अपने लोगों के बारे में बताया। हम सबको बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोताओं को भी उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, तमाम रेडियो सुनने वाले साथियों का, अर्पा रेडियो से सभी श्रोता साथियों का और हमारे उद्घोषक साथियों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इतना बड़ा मंच प्रदान किया और हमारी बातों को साथियों तक पहुंचाने में हमारी मदद।
शुक्रिया
जी, धन्यवाद।
सप्ताह के श्रोता, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आज के हमारे श्रोता साथी मेहमान थे सिरवा बांधा बेमित्रा के योगेश जांगड़े। जिनसे बातचीत कर रही थी मीनू सिंह।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।